एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा तो है, पर शायद हम रोज उस पर सोचते नहीं हैं।
हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा है नागरिकता, सिटीजनशिप।
और इसके लिए हम देख रहे हैं दिमित्री कोचिनोव की किताब, जिसका नाम भी यही है, सिटीजनशिप। ये किताब ना नागरिकता के बारे में हमारी बनी बनाई सोच को थोड़ा हिला देती है।
सही कहा। ये सवाल उठाती है कि भाई नागरिकता क्या सिर्फ एक ठप्पा है, एक लीगल स्टेटस, या फिर कहीं ये दुनिया भर में जो मौके मिलते हैं लोगों को या नहीं मिलते हैं उसमें जो भारी फर्क है उसका एक बड़ा जरिया बन गई है।
और आज की कनेक्टेड दुनिया में ये सवाल कितना अहम हो गया है ना। मतलब हम देखते हैं कि किसी के पास कौन सा पासपोर्ट है, ये तय कर देता है कि वो कहाँ जा सकता है, कहाँ काम कर सकता है, कहाँ सुरक्षित महसूस कर सकता है।
बिल्कुल। तो ये समझना वाकई जरूरी है कि ये सिटीजनशिप, ये नागरिकता आखिर है क्या भला, और ये हमारे समाज को, हमारी दुनिया को कैसे आकार दे रही है।
तो चलिए आज इसी पेचीदा लेकिन बहुत दिलचस्प विषय की पढ़ते खोलते हैं, देखते हैं दिमित्री कोचिनोव हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं।
शुरुआत करते हैं लेखक से ही। दिमित्री कोचिनोव कौन है ये?
हाँ, तो दिमित्री कोचिनोव कोई मतलब ऐसे एकेडमिक नहीं है। वो नागरिकता कानून और खासतौर पर यूरोपियन यूनियन के संवैधानिक मामलों के दुनिया भर में जाने माने एक्सपर्ट हैं।
अच्छा,
जी, नीदरलैंड्स की ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इस फील्ड में उन्हें 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा है।
लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है ना, सुना है उन्होंने असल दुनिया में भी काफी काम किया है।
बिल्कुल यही बात है। उन्होंने कई सरकारों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नागरिकता के उलझे हुए मसलों पर सलाह दी है, तो वो थ्योरी भी जानते हैं और प्रैक्टिकल दिक्कतें भी समझते हैं। इस बनाने में मदद की है क्वालिटी ऑफ नेशनैलिटी इंडेक्स, QNI।
QNI ये क्या है?
सोचिए, एक ऐसा इंडेक्स जो अलग अलग देशों की नागरिकता की क्वालिटी या वैल्यू को मापता है, बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना कीमती है।
अरे वाह, मतलब उनके तर्क सिर्फ हवा में नहीं है, डेटा पर आधारित हैं।
बिल्कुल, इसीलिए उनके तर्क काफी ठोस होते हैं। वो नागरिकता को सिर्फ एक कानूनी लेबल नहीं मानते, बल्कि उसके मनमानेपन और हमारी जिंदगी पर उसके जबरदस्त असर को सामने लाते हैं। उनका नजरिया थोड़ा आलोचनात्मक है, उकसाने वाला भी।
हाँ।
वो चाहते हैं कि हम इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाएं।
दिलचस्प। तो अब आते हैं किताब पर, सिटीजनशिप। MIT प्रेस की एसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है ये। तो इसका मकसद क्या है?
इसका मुख्य मकसद है नागरिकता को लेकर जो हमारे मन में कुछ मिथक बैठे हुए हैं ना, उन्हें तोड़ना। जैसे हम सोचते हैं नागरिकता मतलब देशभक्ति, अपनी पहचान, हमारी संस्कृति से जुड़ाव, एक पवित्र रिश्ता टाइप का।
हाँ, आमतौर पे यही सोचा जाता है।
ये किताब कहती है, रुको, जरा गहराई में देखो, तस्वीर इतनी सीधी नहीं है।
तो फिर कोचिनोव का मेन आर्गुमेंट क्या है, सबसे बड़ा तर्क?
उनका सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि काफी रेडिकल तर्क ये है कि नागरिकता असल में आज की दुनिया में जो इतनी बड़ी ग्लोबल इनइक्वालिटी है, मतलब अमीर और गरीब देशों के बीच का फासला,
हाँ,
उसको बनाने और उसे कायम रखने का सबसे शक्तिशाली औजार है।
सबसे शक्तिशाली औजार नागरिकता? ये तो चौंकाने वाली बात
है ना। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए ये क्या है, जन्म से मिलने वाली लॉटरी, एक विरासत में मिली कानूनी हैसियत, मतलब आप कहाँ पैदा हुए बस इसी से तय हो गया। और ये चीज कुछ खुशकिस्मत लोगों को तो बहुत फायदे देती है, लेकिन दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को मौकों से दूर रखती है।
तो किताब का बड़ा सवाल यही है कि देशभक्ति के नारों और पहचान की कहानियों के पीछे नागरिकता का असली काम क्या है।
बिल्कुल। और कोचिनोव का जवाब थोड़ा कह सकते हैं कड़वा है। वो कहते हैं ये असल में बहिष्कार का, मतलब दूसरों को बाहर रखने का एक लीगल सिस्टम है।
बहिष्कार का सिस्टम?
हाँ, ये उस अन्याय की तरफ इशारा करती है जहाँ किसी इंसान की जिंदगी कैसी होगी, उसकी सुरक्षा, उसकी कमाई, उसकी पढ़ाई, सेहत, ये सब उसकी अपनी मेहनत या काबिलियत से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि उसके हाथ में किस देश का पासपोर्ट है।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो किताब हमें एक तरह से चैलेंज कर रही है।
हाँ, ये हमें चुनौती देती है कि हम नागरिकता को जोड़ने वाली ताकत के बजाय एक तरह की वैश्विक जाति व्यवस्था, या जैसा कोचिनोव एक बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल अपाथाइड, यानी वैश्विक रंगभेद।
वैश्विक रंगभेद,
हाँ, उसके इंजन के तौर पर देखें। ये किताब सबके लिए है, आम पाठक, पॉलिसी मेकर्स और जो भी ग्लोबल जस्टिस में रुचि रखते हैं।
ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, किताब के अंदर के विचारों को देखते हैं।
जरूर।
किताब की शुरुआत ही एक बड़े विचार से होती है, नागरिकता जन्म की लॉटरी है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, वो आंकड़े देते हैं इसके लिए।
हाँ, जैसे?
जैसे सोचिए, स्विट्जरलैंड में पैदा होना और सोमालिया में पैदा होना, ये सिर्फ दो अलग जगह नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी का खाका खींच देता है। आपकी औसत उम्र कितनी होगी, आपको कैसी शिक्षा मिलेगी, आप कितना कमा पाएंगे, आपकी बुनियादी आजादी कितनी होगी, ये सब तय हो जाता है आपकी अपनी कोशिशों से कहीं ज्यादा।
ये तो सच में डरावना लगता है, मतलब आपका कंट्रोल ही नहीं है इस पर।
बिल्कुल। और कुचिनव यहीं पर एक बड़ा नैतिक सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि हम नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव को तो गलत मानते हैं ना?
हाँ, बिल्कुल मानते हैं।
लेकिन राष्ट्रीयता के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे हम बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, जबकि वो भी उतना ही मनमाना है। आपने अपनी राष्ट्रीयता चुनी नहीं, ये आपको जन्म से मिली है, फिर इस आधार पर इतने बड़े फर्क क्यों?
ये सोचने वाली बात है। फिर वो इतिहास की बात करते हैं।
हाँ, अगला हिस्सा इतिहास पर है। ये दिखाता है कि नागरिकता कोई अनादिकाल से चली आ रही चीज नहीं है। पुराने ग्रीस के सिटी स्टेट से लेकर आज के नेशन स्टेट तक इसका रूप बहुत बदला है।
अच्छा, मतलब ये जो आज वाली नागरिकता है ये काफी नई है।
हाँ, महज कुछ 100 साल पुरानी। और यहाँ वो एक और दिलचस्प फर्क बताते हैं, नागरिकता का रोमानी मिथक और उसकी कानूनी हकीकत।
रोमानी मिथक मतलब?
वो देशभक्ति, पहचान वाली बातें।
हाँ, कि नागरिकता मतलब एक गहरा जुड़ाव, साझा संस्कृति, हम सब एक हैं वाली फीलिंग, ये हुआ मिथक।
और कानूनी हकीकत? कानूनी हकीकत ज्यादातर लोगों के लिए बस इतनी ही है कि ये राज्य और व्यक्ति के बीच एक कानूनी लिंक है। और ये लिंक कैसे बनता है? ज्यादातर बस जन्म के इत्तेफाक से। जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी विरासत में मिलती है, वैसे ही नागरिकता मिल जाती है, इस पर आपका कोई जोर नहीं।
तो फिर वो राष्ट्रीय नागरिकता के विचार पर ही सवाल उठाते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि क्या वाकई एक ही देश के नागरिक होने का मतलब है कि हमारे बीच कोई गहरा भाईचारा है या एक दूसरे के प्रति कोई खास जिम्मेदारी है?
अक्सर तो नहीं लगता।
वही, वो कहते हैं कि ये राष्ट्रीय एकता की बातें ज्यादातर सत्ता में बैठे लोगों के फायदे के लिए होती हैं, और यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास है जिसे वो संप्रभुता विरोधाभास कहते हैं।
संप्रभुता विरोधाभास,
ये क्या है, थोड़ा समझाएंगी?
देखिए, नागरिकता का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ता है ना।
हाँ।
कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ रहेगा, ये सब ग्लोबल इम्पैक्ट है।
हाँ, सही बात है।
लेकिन नागरिकता देने या छीनने के नियम कौन बनाता है? हर देश खुद अपनी मर्जी से।
अच्छा, हाँ, इंटरनेशनल कानून का इस पर लगभग कोई कंट्रोल नहीं है, यही विरोधाभास है। असर ग्लोबल पर, नियम पूरी तरह लोकल या नेशनल। इसे होता क्या है कि देशों को लोगों को बाहर रखने की, एक्सक्लूड करने की बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती है।
कोई उदाहरण है इसका?
हाँ, एक पुराना फेमस केस है, नॉटबॉम केस। उसमें यही दिखा था कि देशों का अधिकार कितना ज्यादा है ये तय करने में कि कौन उनका नागरिक है और कौन नहीं, भले ही उस आदमी का उस देश से असल जुड़ाव बहुत कमजोरी क्यों ना हो।
बापरे, मतलब देशों की पावर बहुत ज्यादा है इस मामले में।
बिल्कुल। और इसके बाद किताब एक और भी ज्यादा, कह सकते हैं, चौंकाने वाला विचार रखती है।
वो क्या?
कि नागरिकता असल में एक संपत्ति की तरह है, एक प्रॉपर्टी।
संपत्ति? कैसे?
जैसे आप जमीन जायदाद विरासत में पाते हैं, वैसे ही ज्यादातर लोग नागरिकता पाते हैं। और जैसे आप संपत्ति खरीद सकते हैं,
वैसे नागरिकता भी खरीदी जा सकती है, वो गोल्डन वीजा वाली बात।
एग्जैक्टली, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। कुछ देश हैं जो पैसे लेकर अपनी नागरिकता या रेजिडेंसी बेचते हैं, माल्टा, साइप्रस, कुछ करेबियन देश।
तो ये तो सीधे सीधे उसे एक बिकाऊ चीज बना देता है।
हाँ, और यहीं पर वो क्यूएनआई इंडेक्स वाली बात फिर आती है। कुचिनव बताते हैं कि हर नागरिकता बराबर नहीं है, हर पासपोर्ट की एक वैल्यू है।
ये वैल्यू कैसे तय होती है?
दो चीजों से। एक तो देश के अंदर की क्वालिटी, मतलब वहां जीवन कैसा है, सुरक्षा, सेहत, शिक्षा वगैरह, इसे कहते हैं इंटरनल क्वालिटी।
ठीक है।
और दूसरी है एक्सटर्नल वैल्यू, मतलब वो पासपोर्ट आपको देश के बाहर क्या करने की आजादी देता है, कितने देशों में आप बिना वीजा जा सकते हैं, कहाँ काम कर सकते हैं वगैरह।
अच्छा, तो इससे एक पूरी हायरार्की, एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था बन जाती है।
बिल्कुल। टॉप पर कुछ पासपोर्ट्स जैसे जापानी, जर्मन, स्विस, और नीचे बहुत सारे। सोचिए, एक जापानी पासपोर्ट और एक इरिट्रियाई या अफगानी पासपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है।
फिर ईयू का क्या जिक्र है, यूरोपियन यूनियन?
कुचिनव ईयू नागरिकता को एक बड़ा प्रयोग मानते हैं, मतलब नेशन स्टेट से ऊपर उठकर नागरिकता बनाने की कोशिश।
तो ये सफल रही है?
कुछ हद तक। इसने ईयू देशों के नागरिकों के लिए आपस में आना जाना, काम करना आसान बनाया है, मौके बढ़े हैं।
लेकिन
ये भी परफेक्ट नहीं है। एक तो ईयू नागरिक बनने के लिए पहले किसी सदस्य देश का नागरिक होना जरूरी है।
हाँ, ये तो है।
और दूसरी विडंबना ये कि ईयू के ही कुछ सदस्य देश खुद गोल्डन पासपोर्ट बेच रहे हैं।
ये तो पूरी बात को ही काटता है कि नागरिकता कोई पवित्र बंधन है।
ये दिखाता है कि ये एक बिकाऊ माल भी है।
ये सब सुन के तो ऐसा लग रहा है कि नागरिकता का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है।
और यही किताब अपने सबसे तीखे तर्क पर पहुंचती है कि नागरिकता कैसे वैश्विक रंगभेद यानी ग्लोबल अपार्थाइड को जन्म देती है।
ये शब्द बहुत भारी है, रंगभेद।
हाँ, भारी है, लेकिन कोचनोव का तर्क समझिए। रंगभेद में क्या था? नस्ल के आधार पर लोगों को अलग किया गया, उनके अधिकार छीने गए। कोचनोव कहते हैं कि आज नागरिकता कुछ वैसा ही काम ग्लोबल लेवल पर कर रही है।
कैसे?
आपकी मूवमेंट, आपके मौके, आपकी पूरी जिंदगी या आपकी काबिलियत या जरूरत पर तय नहीं हो रही, बल्कि इस पर कि आपके पास किस देश का पासपोर्ट है। सोचिए वीजा नियमों के बारे में।
हाँ, वो तो बहुत सख्त होते हैं कई देशों के लिए।
बिल्कुल, और अक्सर ये नियम उस देश की आर्थिक ताकत से जुड़े होते हैं, न कि आपकी योग्यता से। ये पूरा सिस्टम जो है वो नॉन सिटीजन्स के साथ, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हों, शरणार्थी हों, उनके साथ कानूनी भेदभाव को जायज ठहराता है।
मतलब उन्हें हिरासत में लेना, डिपोर्ट करना, ये सब कानूनी है?
हाँ, क्योंकि वो नागरिक नहीं है। और इसका सबसे भयानक रूप क्या है? स्टेटलेसनेस, राज्यहीनता, जब कोई इंसान किसी भी देश का नागरिक नहीं होता।
जैसे रोहिंग्या लोगों के साथ हुआ।
बिल्कुल, उनके पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं बचती, वो कहीं के नहीं रहते। ये नागरिकता सिस्टम का सबसे स्याह पहलू है।
तो क्या इसका कोई हल है? कोचनोव कुछ रास्ते सुझाते हैं?
हाँ, अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम बताकर रुक नहीं जाते। किताब का अगला हिस्सा समाधान खोजने की कोशिश करता है।
जैसे क्या विकल्प हो सकते हैं?
वो कई चीजें देखते हैं। क्या कोई ग्लोबल सिटीजनशिप जैसी पहल हो सकती है, या शहरों के लेवल पर नागरिकता के नए प्रयोग? क्या नागरिकता जन्म के बजाय आपके योगदान या आप कहाँ रहते हैं इस आधार पर मिलनी चाहिए?
क्या अधिकारों को राष्ट्रीयता से अलग किया जा सकता है?
ये भी एक बड़ा सवाल है। वो ईयू जैसे मॉडल की संभावनाओं और उसकी सीमाओं पर भी सोचते हैं। और आज की दुनिया में नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, डिजिटल पहचान वगैरह, साथ ही क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियां हैं जो हमें देशों की सीमाओं से परे सोचने पर मजबूर कर रही हैं।
तो ये सब शायद नए रास्ते खोल सकते हैं।
हाँ, शायद ये हमें राजनीतिक सदस्यता यानी पॉलिटिकल मेंबरशिप के बारे में नए सिरे से सोचने का मौका दे रहे हैं।
और किताब के आखिर में कोचनोव एक विजन पेश करते हैं।
जी।
वो एक मल्टी लेयर्ड नागरिकता का सुझाव देते हैं। मतलब आपकी लोकल पहचान भी रहे, नेशनल पहचान भी रहे, लेकिन साथ ही आपके योगदान, आपके निवास और सबसे जरूरी आपकी मानवीय गरिमा के आधार पर आपको ग्लोबल लेवल पर भी कुछ अधिकार और जुड़ाव मिले,
ताकि नागरिकता सिर्फ जन्म की लॉटरी ना रह जाए।
बिल्कुल, वो कहते हैं कि ये बदलाव सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये एक नैतिक जरूरत है, एक मॉरल इम्पेरेटिव है।
वाह।
तो इस पूरी बातचीत से कुछ बहुत जरूरी बातें निकल कर आ रही हैं।
हाँ बिल्कुल, पहली और सबसे बुनियादी बात शायद यही है कि नागरिकता कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जन्म से मिलने वाला एक आर्बिट्ररी प्रिविलेज है, मनमाना विशेषाधिकार।
जैसे पुराने जमाने में राजा के बेटे को राजगद्दी मिल जाती थी बिना किसी योग्यता के।
हाँ, कुछ वैसा ही। ये हमारी बराबरी और मेरिट वाली सोच को सीधी चुनौती है।
दूसरी बात, वो रोमानी मिथक और कानूनी हकीकत का फर्क। नागरिकता सिर्फ फीलिंग्स का मामला नहीं है, ये एक लीगल टूल है जिसकी ताकत अधिकार देने या छीनने में है।
और ज्यादातर लोगों के लिए ये बस एक कानूनी लेबल है जो जन्म के इत्तेफाक से मिला है।
तीसरी बात जो साफ दिखती है वो है नागरिकताओं की हायरार्की, एक सीढ़ी। दुनिया सिर्फ नागरिक और गैर नागरिक में नहीं बटी,
बल्कि अच्छे पासपोर्ट और कमजोर पासपोर्ट वालों में बटी है। एक स्विस पासपोर्ट और एक नाइजीरियाई पासपोर्ट बराबर नहीं है, उनके मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है।
और ये अंतर लोगों की जिंदगी तय कर देता है।
चौथी बात जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, नागरिकता वैश्विक रंगभेद का औजार है।
ये शब्द बार बार आ रहा है और हर बार खटकता है।
खटकता है, लेकिन तर्क मजबूत है। जैसे रंगभेद ने नस्ल के आधार पर बांटा, वैसे ही नागरिकता का एक ग्लोबल सिस्टम राष्ट्रीयता के आधार पर दुनिया को बांट रहा है, मौकों का असमान बंटवारा कर रहा है, सीमाओं और वीजा के जरिए। पासपोर्ट बेच रहे हैं तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये कोई पवित्र बंधन है? ये तो साफ है कि इसे कीमती चीज, एक एसेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है।
और आखिर में इस सब की जड़ कहाँ है? स्टेट सॉवरेनिटी, राज्य की संप्रभुता।
हाँ, हर देश को यह तय करने की जो लगभग पूरी आजादी मिली हुई है कि कौन उसका नागरिक होगा, कौन नहीं, और इंटरनेशनल लॉ का इसमें कमजोर दखल यही इस अन्याय को बनाए रखता है।
किताब में कुछ कोट्स या विचार भी होंगे जो याद रह जाते हैं?
हाँ बिल्कुल। एक मुख्य विचार जो कुचिनो बार बार कहते हैं वो कुछ ऐसा है कि नागरिकता हमारे समय का शायद सबसे बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन है जो अरबों लोगों को सिर्फ जन्म के संयोग के आधार पर अवसरों से वंचित करती है।
मानवाधिकार उल्लंघन नागरिकता को, ये तो बिल्कुल उल्टा नजरिया है।
हाँ, ये इसे प्रॉब्लम के सोर्स की तरह दिखाता है।
एक और तुलना वो करते हैं, वो भी बड़ी तीखी है।
कौन सी?
वो कहते हैं, हम ऐसी व्यवस्था कभी नहीं मानेंगे जहां आपकी नस्ल आपके अवसर तय करें, लेकिन हम बिना सवाल किए ऐसी व्यवस्था मान लेते हैं जहां आपकी राष्ट्रीयता आपका भाग्य तय करती है।
ये तो सीधे सीधे हमारे दोहरेपन पर चोट है। एक तरह का भेदभाव नामंजूर, दूसरा मंजूर।
और वो गोल्डन पासपोर्ट वाली बात पर उनकी टिप्पणी भी जबरदस्त है।
क्या कहते हैं वो?
कि ये प्रोग्राम सरकारों के पाखंड को दिखाते हैं, जो सरकारें कहती हैं नागरिकता पवित्र बंधन है, वही उसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच देती है। मतलब सरकारें खुद मानती हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है।
लेकिन वो उम्मीद भी जगाते हैं।
हाँ, आखिर में वो कहते हैं कि चॉइस ये नहीं है कि या तो ये अन्याय वाली व्यवस्था रहे या फिर अराजकता फैल जाए। चॉइस ये है कि या तो ये अन्याय चलता रहे या फिर हम धीरे धीरे सुधार करके एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ें जो जन्म की लॉटरी के बजाय मानवीय गरिमा पर आधारित हो।
मतलब बदलाव मुमकिन है और जरूरी भी।
बिल्कुल।
तो अब बड़ा सवाल ये कि इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम क्या करें इसका?
देखिए, पहली चीज तो ये कि अगर हमारे पास एक तथाकथित अच्छा या शक्तिशाली पासपोर्ट है तो ये किताब हमें उसके प्रति जागरूक बनाती है। ये हमारी कमाई नहीं, एक प्रिविलेज है, एक सहूलियत।
शायद ये हमें थोड़ा हम्बल बनाए और राष्ट्रवाद की जो संकीर्ण सोच होती है उससे ऊपर उठकर देखने में मदद करे।
बिल्कुल। दूसरी बात, जब हम दुनिया भर की खबरें पढ़ते हैं, माइग्रेशन पॉलिसी, रिफ्यूजी क्राइसिस, बॉर्डर पर दीवारें, तो हम इन्हें एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। हम पूछ सकते हैं, क्या ये पॉलिसी फेयर है? कहीं ये उस ग्लोबल अपार्थाइड को और मजबूत तो नहीं कर रहे?
ये हमें ग्लोबल इकोनॉमी को समझने में भी मदद करती है। टैलेंट का फ्लो, क्यों कुछ लोग आसानी से कहीं भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, और क्यों कुछ बेहद काबिल लोग भी अपने देश में फंसे रह जाते हैं। ये सिर्फ मार्केट की बात नहीं है, ये नागरिकता की दीवारें भी हैं।
सही कहा। और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमें जस्टिस यानी न्याय के बारे में सोचने का तरीका बदलने को कहती है। सिर्फ अपने देश के नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए।
क्या किसी इंसान के अधिकार और उसकी गरिमा सिर्फ इस बात पर निर्भर करनी चाहिए कि वो नक्शे पर खींची किस लाइन के किस तरफ पैदा हुआ है? ये सवाल किताब बार बार उठाती है। तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी टेक अवे या सीख ये है कि नागरिकता कितनी आर्बिट्ररी, कितनी आकस्मिक चीज है। जिसे हम इतना नेचुरल मानते हैं वो असल में बदली जा सकती है। ये सिर्फ एक पहचान नहीं, ये एक एक्टिव सिस्टम है जो लगातार तय करता है कि कौन अंदर है और कौन बाहर।
और मेरे लिए नागरिकता को वैश्विक रंग भेद के लेंस से देखना, ये सच में आंखें खोलने वाला था। ये सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे लीगल स्ट्रक्चर जो न्याय के लिए होते हैं वही इतनी बड़ी असमानता पैदा कर सकते हैं। ये किताब नागरिकता को सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से निकालकर ग्लोबल इकोनॉमिक जस्टिस की बड़ी बहस के सेंटर में लाती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।